नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल से वार्ता करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कीव में अमरीका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात कर रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने पर चर्चा की। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष बाद एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
श्री मोदी ने कहा कि दशकों पहले श्री प्रभुपाद स्वामी जी भी फ्रांस आए थे और इस्कॉन के माध्यम से उन्होंने भारत और फ्रांस के बीच आध्यात्मिक संबंधों में एक नया अध्याय खोला।
बीएपीएस के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है।
भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है। स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है। इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री बेटेल आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
मध्यप्रदेश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अब अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण है कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्यप्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध है।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कल कीव में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात कर रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
वार्ता के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि क्षेत्रीय मुद्दे का समाधान अंततः केवल राष्ट्रीय नेताओं के स्तर पर ही संभव हो सकता है। उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों, सुरक्षा गारंटी, यूक्रेन के भविष्य और आर्थिक पुनर्निर्माण योजना पर तीन दौर की वार्ता की। विटकॉफ ने बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई पिछली चर्चाओं से विचार लेकर आया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस संघर्ष का कूटनीतिक समाधान चाहता है। कुशनर ने कहा कि रूस के उद्देश्यों को भविष्य के लक्ष्यों के साथ साथ ध्यान में रखना होगा। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सैन्य शक्ति सुरक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनी रहनी चाहिए और उन्होंने स्थायी शांति सुनिश्चित करने के मदद के लिए भविष्य की परामर्श बैठकों में यूरोपीय भागीदारों के शामिल होने का स्वागत किया। यह बातचीत अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच जारी चर्चा में गति बनाए रखने के प्रयासों को दर्शाती है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। संयुक्त अरब अमीरात इस वर्ष मई में राष्ट्रीय हितों का हवाला देते हुए ओपेक प्लस से अलग हो गया था। उसने कहा था कि वह बाजार की तत्काल जरूरतों को पूरा करने में प्रभावी योगदान देना चाहता है। ओपेक प्लस की अगली बैठक अक्टूबर में होने की उम्मीद है, जिसमें वैश्विक बाजार की स्थिति और तेल उत्पादन की समीक्षा की जाएगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा।
सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल SNSC के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी वाली सीमा से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार जलडमरू मध्य की ओर किसी भी दिशा से आने वाले और इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जहाजों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। मेजर जनरल रिजाई ने कहा कि ईरान द्वारा जलमार्ग बंद किए जाने के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही में भारी कमी आई है। ने ये भी दावा किया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे अमरीकी जहाजों को निशाना बनाया गया है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
भारत ने AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC Under-20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल से वार्ता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष बाद AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।